संतप्त मानस शांत हूं, जिनके कल पन्ने में बहुत मार्मिक कलश का पद्यानुवाद पढ़ा था, जो बात उस कलश में कही गई है वही बात फिर आगामी गाथा में आचार्य देव खुद कहते हैं। एक तरह से वो जो कलश है वो इस गाथा का उत्थान का रूप कलश ही समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस गाथा का जो हेडिंग है उसमें ही लिखा है किम नाम तत्पदम इत्याह, कि वो जो कौन सा पद है कि जिसमें तुम जाने के लिए हमसे कह रहे हो। उसने कहा ना, अंधे जगत अपद पद में मत निज अंधे जगत की प्राणी हो, यह पद तुम्हारा पद नहीं, क्यों रो रहे? आओ इधर जागो, इधर आओ रहो परमानंद में हो, परम पदमय तुम स्वयं हो चैतन्यमय। तो अब गाथा में कहते वो पद जिसकी तुम इतने गीत गा रहे और तुम सारे जगत का आह्वान कर रहे कि तुम आओ वो इसमें इस पद को धारण करो। कलशों में ऐसा आह्वान कई जगह मिलेगा। अब जीवाधिकार खत्म करते हैं ना, जीवाधिकार वहां भी शायद 32वां कलश है, तो उसमें भी ये कहा है कि आओ वो सारे लोग इस ज्ञान सागर में नहाओ, है ना, आइए नहाइए एकमय हो जाइए, है ना, है? बोलो बोलो कलश को, कितना बढ़िया कलश है, है? 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 अरे आत्मा इसी तरह का ये दूसरा कलश था जो अभी अपन ने पढ़ा, अपद पढ़ो अपद पद में वो पूछते हैं जिस पद के तुम इतनी गीत गा रहे वो पद कैसा है। तो मूल गाथा में कहते हैं आदमी दब्य भावे अपदे मोतूण गिन्नत नियदम, आदमी दब्य भावे स्वान भूति गम्य है, वह जो भगवान आत्मा जो स्वपद है वो स्वपद कैसा है। तो कहते हैं वो आत्मा आत्मरूप है और स्वानुभूति गम्य है। स्वानुभूति से मालूम पड़ेगा, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व आता ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। और ये नियत है, स्थिर है, निजभाव रूप है और नित्य है। ये सारे विशेषण जो 14वीं-15वीं गाथा में भगवान आत्मा के बताए थे ना, वो लगभग वो सब इसमें दोहरा दिए हैं। हे भव्य जीवो, आत्मा में अपद भूत द्रव्य भावों को छोड़कर जो द्रव्य और भाव माने पर पदार्थ और उनके भाव, वो आत्मा में अपद भूत हैं, माने आत्मा के पद नहीं हैं, अपद भूत हैं, उन्हें छोड़कर एक नियत माने निश्चित स्थिर और एक रूप तथा स्वभाव स्वरूप से उपलब्ध प्रत्यक्ष अनुभव गोचर इस ज्ञान भाव को जैसा का तैसा ग्रहण करो, क्योंकि यही तुम्हारा पद है। देखो दौलत राम जी ने छेड़ा लावे बिल्कुल इसकी छाया दी है, तो पिछले कलश की और इसकी देखो लिखा ना पीछे बगल में कहा रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे। तुम्हें मौका दाव लग गया है, इस दाव को तुम चूको मत और अपने पद को मैं तुम उसमें रच जाओ उसमें पच जाओ। तो वो ये सारे विशेषण देखो नित्य भी आ गया, फिर एक भी आ गया, फिर नियत भी आ गया और स्थिर भी आ गया और अनुस्वानुभूति गम्य भी आ गया। ये सारे विशेषण उस भगवान त्रिकाली जो भगवान आत्मा के हैं वो ही तेरा पद है। वैसे पद जन समझते किसे बोलते हो, अपने बोलते हैं ना प्रधानमंत्री पद है कि राष्ट्रपति का एक पद है। ये जो एक होते हैं शब्द और एक होते हैं पद है। अंग्रेजी में तुम समझते हो तो एक होती है टर्म और एक होते हैं वर्ड। टर्म में और वर्ड में अंतर समझते हो, ये कहते हैं हर ज्ञान के क्षेत्र की टर्मिनोलॉजी अलग होती है, उसे हिंदी में बोलते पदावली। तो पद में और शब्द में क्या फर्क है, शब्द भी किसी ना किसी पदार्थ का वाचक होता है ना, और पद भी किसी ना किसी पदार्थ का वाचक होता है, लेकिन वो शब्द किसी एक वस्तु को पकड़ लेता है। ये पुस्तक तो अपने इसको पकड़ लिया, लेकिन पद वो पारभाषिक होता है, जैसे अरहंत पद, सिद्ध पद, राष्ट्रपति पद। तो ये भारत के संविधान का एक पद है और राष्ट्रपति शब्द से उसे जाना जाता है और उसके जो अधिकार हैं वो सब संविधान में लिखे हैं, मैंने उसमें इतना भाव भरा पड़ा है वो पद में, समझे ना। प्रत्येक सब जो महत्वपूर्ण वो होते हैं जिन पद बोलते हैं ना, तो उनको जैसे अमेरिका का भी राष्ट्रपति है और यहां का भी राष्ट्रपति है और दोनों में कितना फर्क है। तो यहां का पद अलग है और वहां का पद अलग है, उसका अलग अलग अर्थ समझना पड़ेगा है? देखो वहां अमेरिका का राष्ट्रपति यहां आए तो स्वागत के लिए प्रधानमंत्री जाता है, अपने यहां का राष्ट्रपति नहीं जाता। क्यों? वो ये जानते हैं भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण पद ज्यादा पावरफुल पद प्रधानमंत्री का है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति आना चाहिए क्योंकि वे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अमेरिका के हैं। तो पद जिसका एक अरहंत अपना कहते पद है, तो जो ये व्याख्या करते हैं अरि माने शत्रु और उसको हंत माने मारने वाली, तो ये व्याख्या नहीं चलेगी। जबरदस्ती हमारे अरहंत भगवान को हत्यारे बना रहे तुम, अरि माने शत्रु होता ना, किसी को मारने वाला बता रहे, जो पूर्ण वीतरागी हैं बिल्कुल अहिंसक हैं। कि भैया अरहंत जो है हमारा जैन दर्शन का पद है और उसके परिभाषा बताई जा सकती है और परिभाषा में भी वो नहीं सिमटेगा। उसके जो जितनी जितनी विशेषताएं होती हैं वो सारी विशेषताओं का वर्णन करेंगे तब अरहंत शब्द का पद का अर्थ हमारी समझ में आएगा। तो अब आत्मा अपना आत्मा है तो वो ही अपना पद है। अब दुनिया में तीन चीजें होती हैं ना, आदि व्याधि और समाधि, ये तो सुना होगा आपने। आदि माने सारी आदि माने मानसिक रोग, व्याधि माने शारीरिक रोग और उपाधि माने बाहर के बीमारियां, समझे ना। उपाधि दादा बोल रहे सम्मान को भी बोलते हैं, वो उपाधि है ना। ये जो अपने मन में होते हैं विकल्प है, मानसिक रोग उसे आधी बोलते हैं, शरीर में होते व्याधि बोलते हैं। अब ना तो हमारी तकलीफ मन में है ना शरीर में है, अब आपको एक उपाधि मिल गई दानवीर सेठ साहब। अब दानवीर की उपाधि मिल गई आप बहुत खुश हैं, लेकिन आज आपका बहुत सम्मान हुआ, दानवीर की उपाधि आपको बाजार में दी गई, अखबारों ने कवरेज किया, टीवी पर आया, तो अपन देख रहे के कितना खुश होते हैं। लेकिन दूसरे ही दिन अपने घर को भिखारियों ने घेर लिया, बताओ तब से बाबू जी दे दो कुछ दे दो कुछ दे दो। तो हमने देखा तो स्वयं बहुत गुस्सा आया कि देखो ये घर भिखारियों ने घेर लिया, कैसा बिना निमंत्रण के थोड़ी आए। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे मोहल्ले में भी कोई दानवीर रहता है, हमें तो आज पता चला राजस्थान पत्रिका से देने के भास्कर से खड़े भगाओ इनको गंदे गंदे लोग। अरे भाई तुम उपाधि लेगा तो ये उपाधि पीछे पड़ेगी तेरी है ना, आप सुने ना ये अब उपाधि समझ में आई ना। जब हम दानवीर की उपाधि लेते हैं, जब हम समझ लीजिए कि बहुत वाणी विभूषण की और जो जो नाम ले लो ऐसी उपाधियां लेते हैं, तब हमको ऐसा लगता है कि बहुत सुन। लेकिन वो एक एक उपाधि हमको बाहर की कितनी झंझटें खड़ी करती हैं, हजारों प्रश्न पूछने वाले आ जाएंगे तो आपको हम तो नहीं बताएंगे तो तुमने उपाधि काहे को ली है। तो ये बाहर के जो झंझटें हैं इन्हें उपाधि बोलते हैं, समझे, आदि व्याधि। और इन तीनों से रहित जो होता है उसे बोलते हैं समाधि। तो ये पद जो है एक तरह से उपाधि है जगत में। तो वो कहते हैं बाकी के जितने पद हैं वे सब उपाधि रूप पर पद हैं, वो स्वपद नहीं है। और अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा दृष्टि का विषय, ध्यान का ध्येय, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थक नय का विषय, ये जो है वो वास्तव में स्वपद है। दौलत राम जी ने कि वो स्वपद रची, अपने पद में तू रच जा, उसमें रच जा पच जा। तो आदमी दव्य भावे, तो आदमी अपने रूप है। देखो इस संबंध जीव और आत्मा में फर्क क्या है ये भी थोड़ा समझो। जीव प्लस अपनापन उसका नाम है आत्मा, और आत्मा में से अपनापन निकाल दो तो उसका नाम है जीव। अब मुझे लगता नहीं है सही, आत्मा माने मैं, जीव तो सारी दुनिया है, लाखों में समझिए ना, लेकिन आत्मा में अपनापन आ जाता है, अपने जीव को आत्मा बोलते हैं। मतलब मुख्य भाव उसमें अंतर ये है। तो अगर आदम जो अपने रूप है, ऐसा जो जीव तत्व जीव वस्तु है, आदम में द्रव्य भूत है ना, कर रहा हूं उसको छोड़कर और जितनी भी चीजें हैं वो परपद हैं। गाथा में रखा ना, अपदे मोतून गिन्न तह नियदम, अपदों को छोड़कर तू एक निश्चित आत्मभाव रूप जो है, ऐसा जो पद है उसको तू ग्रहण कर। आत्मख्याति टीका में इसको खोलते हैं। वास्तव में आत्मा ही परमार्थ है, परम पदार्थ है, और वह ज्ञान ही है। परमार्थ से जानते हैं, परम और अर्थ, अर्थ माने पदार्थ होता है ना, तो परमार्थ का अर्थ होता है परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थक मय का विषय रूप पदार्थ। इसमें परम शब्द का अर्थ क्या लगा है, वो परम माने परम शुद्ध निश्चय नय का, ये परम शब्द दोनों लगे ना, तो एक नय है निश्चय व्यवहार में, उसका नाम क्या है, परम शुद्ध नहीं परम शुद्ध निश्चय नय, और द्रव्यार्थक पदार्थ में है एक नय, उसका नाम क्या है, परम भाव ग्राही। तो परम शुद्ध निश्चय नय का और परम भाव ग्राही द्रव्यार्थक नय का विषय जो है पर उसको परम बोलते हो, अर्थ माने पदार्थ, तो परमार्थ माने अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तो बता परमार्थ नय से, परमार्थ नय से, परमार्थ से, तो वो ही नय असली अर्थ में वास्तव में परमार्थ नय है। पेज पलट गया, चार का आ गया क्या, अरे दो पेज चले गए इसमें, ये दो दो पेज है, दो पेज ही जा रहे हैं क्या, बात है 22 21, इसमें तो वही है, दोनों में ही है वो सब, भगवान आत्मा भगवान आत्मा, इसमें भी है, वास्तव में भगवान आत्मा है ना, वास्तव में इस भगवान आत्मा में द्रव्य भाव भूत बहुत से भावों के मध्य में जो भाव अतत स्वभाव रूप अर्थात प्रभाव रूप अनुभव में आते हैं, वे अनियत अवस्था वाले अनेक रूप क्षणिक व्यभिचारी भाव हैं। तो आत्मा को एक कहा तो इन्हें अनेक कहा, आत्मा को नित्य कहा तो इन्हें क्षणिक कहा, है ना, वे सभी स्वयं अस्थाई होने के कारण स्थाता का स्थान अर्थात रहने वाले का स्थान नहीं ले सकने योग्य होने से अपद्भूत हैं, और जो भाव तत्स्वभाव रूप से अर्थात आत्म स्वभाव रूप से अनुभव में आता हुआ नियत अवस्था वाला एक रूप नित्य अभ्यचारी भाव है, वह एक ही स्वयं स्थायी होने के कारण स्थाता का स्थान अर्थात रहने वाले के स्थान हो सकने योग्य होने से पदभूत है। इसलिए समस्त अस्थायी भावों को छोड़कर परमार्थ रस रूप से स्वाद में आने वाला स्थायी भाव रूप यह एक ज्ञान ही आस्वादन के योग्य है। इसमें उन्होंने वे सारे विशेषण दिए, वो विशेषण सब जो परम पर पद है ना, जो आत्मा नहीं है, उनमें उनके उल्टे विशेषण टीका में लगाए। अमृतचंद की एक स्टाइल है कि वे ये बात कहेंगे कि जैसे आश्रव असरण है, आश्रव अनित्य है, आश्रव अध्रुव है, तो वो टीका लिखेंगे तो ये आश्रव क्या है ये नहीं लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे ये भगवान आत्मा परम शरण भूत है और आश्रव शरण भूत नहीं है इसलिए वो अशरण है, माने वो साथ में आत्मा को रख करके बताएंगे। इसलिए यहां पर इन्होंने तो कहा था परमार्थ जो परम पद रूप है उसको तू ग्रहण कर, तो वो उन्होंने जो परम पद रूप नहीं है ऐसे सारे पर पदार्थों को उनको भी जैसे अपना आत्मा एक है और बाकी जगत के सारे पदार्थ अनेक हो गए ना, तो ऐसे ऐसे ये नित्य है और तो उन्होंने अंत में एक शब्द डाला स्थाता के स्थान लेने में बेसमर्थ नहीं है और ये भगवान आत्मा स्थाता का स्थान लेने में समर्थ है। ये क्या कह रहे, ये कह रहे कि देखो एक घर में अपने यहां चार आदमी रहते हैं और राशन कार्ड बनाने वाला आता है تو وہ کہتا آپ کے راشن کتنے آدمی ہیں؟ تو ایک پتی ایک پتنی دو بچے. لکھ لیتا ہے. پھر وہ کہتا ہے بھائی صاحب ہمارے یہاں مہمان بہت آتے ہیں تو ایک دو تو بنے ہی رہتے ہیں, اس لیے دو اور لکھ لو تم. اب کم سے کم چھ آدمی کا راشن ہمیں ملنا چاہیے نا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ان کو بھی تو کھلانا پلانا پڑتا ہے نا. تو وہ نہیں لکھے گا. کہتے بھیا جو آپ کے یہاں استھائی رہتے ہیں ان کی بات کہو, وہ آپ کا بیٹا نہیں بھی ہو تو چلے گا, لیکن ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہو تو وہ کتا بھی رہتا ہو تو اس کا نام لکھا جا سکتا ہے. سمجھ گیا؟ کوئی بھی ہو لیکن وہ استھائی ہونا چاہیے. استھائی استھاتا کا استھان لے سکتا ہے. یہ کہتے نا آتما کا استھان کون لے سکتا ہے, کہ جو استھائی رہے, استھائی روپ سے رہنے والا نہیں لے سکتا. اس لیے جو ساری پریائیں استھائی روپ سے ہیں اس لیے یہ استھاتا کا استھان نہیں لے سکتی, اس لیے وہ اپد بھوت ہیں. تو موکش پدوی اپد بھوت ہے ایسا کہہ رہے وہ, کیونکہ یہ استھائی نہیں ہے. استھائی کا استھان کون لے سکتا ہے؟ جب وہ کہے کہ صاحب اب آپ بتائیے سمسیا ہے, ہم کھلائیں گے کیا اس کو؟ راشن سے تو ابھی تو اپنے یہاں بازار میں الگ سے ملتا ہے. ہندوستان میں ایسا راشن لاگو ہوتا ہے, چائنا جیسے دیشوں میں جو کمیونسٹ دیش ہیں اس میں تو بازار سے کچھ ملے گا ہی نہیں. جو کچھ آپ کو ملنا ہے وہ راشن کارڈ سے ہی ملے گا اور کہیں کچھ اپلبدھ ہوگا ہی نہیں. پھر کیا کرو گے؟ دو آدمی کو کھلانا تو پڑے گا نا. تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے یہاں مہمان بہت کیسے آتے ہیں, تم بھی بہت جاتے ہو گے. کہ مہمانوں کا ایک ویوہار ہے, جو ہمارے یہاں آتا ہے ہم اس کے یہاں جاتے ہیں اور جو ہمارے یہاں نہیں آتا ہم اس کے یہاں نہیں جاتے ہیں. تو جب تم باہر جاؤ گے نا دوسرے کے یہاں, اس کا جو بچے گا وہ اسے کھلا. یعنی مستان مہمان کا نام استھائی والے کا نام, مہمان مطلب استھائی, استھائی والے کا نام. اپنا بیٹا امریکہ میں رہتا ہو تو اس کا نام بھی نہیں لکھا جا سکتا. اپنا بیٹا ہے بمبئی میں رہتا ہو تو بھی نہیں لکھا جا سکتا راشن کارڈ میں. اس میں اپنے پرائے سے نہیں ہے مطلب, وہ استھائی روپ سے رہنے والے کا نام ہی وہاں آتا ہے نا. اس میں لکھا نام دیکھو, उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि जीवा जीवाधिकार में जो वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत 29 प्रकार के भाव बताए गए थे वे सभी भाव आत्मा के लिए अपद हैं. ये निकालना निष्कर्ष. ऊपर तो विशेषणों से बताए लेकिन वो 29 प्रकार के भाव जो हैं جس میں برنادی 20 اور راگادی 9, اور جن کو ہم دو روپ میں کہتے ہیں برنادی ارو راگادی تین نے جو بھاو کو نیارا کیا, بے سبھی بھاو آتما سے اپد ہیں. اپنا نے یوگ نہیں ہے, آتما نہیں ہے, کیونکہ وہ آتم سوبھاو نہ ہونے سے اتت سوبھاو ہیں. تت سوبھاو نہیں ہے, اتت سوبھاو ہیں, مانے پر روپ ہیں. अतत स्वभाव है, अनियत है, असंख्य प्रकार के होने से अनेक हैं, नाशवान होने से क्षणिक हैं और संयोग जनक होने से व्यभिचारी भाव हैं. देखो ये सारी बिल्कुल एकदम समेट के आ गया ना. कितना सुगठित वाक्य है, पूरी टीका का उसका सब भाव उसमें आ गया है. एकमात्र ज्ञान भाव ही आत्मा का स्वपद है. आत्मा है, स्वपद माने आत्मा है, क्योंकि वह आत्मा का स्वभाव होने से तत्व स्वभाव है. वे अतत स्वभाव थे तो तत्व स्वभाव है, वे अनियत थे तो ये नियत है, वो अनेक थे तो ये एक है, वो अनित्य थे तो ये नित्य है, और स्वभाव भाव वो प्रभाव भाव थे तो ये स्वभाव भाव होने से अभ्युपचारी है. जितने दोष उन्होंने बताए थे उतने ही गुण इसमें बताए हैं. इस तरह स्वभाव में और प्रभाव में भेद विज्ञान किया है, स्वपद में और परपद में भेद विज्ञान किया है, اور کہتے تم سوپد میں آؤ اور پرپد سے برکت ہو جاؤ. श्री गुरुदेव का है इसमें और जयचंद छाबड़ा का दिया है, लेकिन गुरुदेव ने बहुत मार्मिक निष्कर्ष निकाला है. उन निष्कर्ष को अपन पढ़ते हैं पेज नंबर 195 पे. पूरा तो है ही गुरुदेव का, लेकिन निष्कर्ष यहां पांचों भाव बोलों में भगवान आत्मा का ज्ञान स्वभाव बतलाया है जो इस प्रकार है कि तत् स्वभाव से आत्मा आत्मभाव स्वरूप है. चैतन्य स्वभाव से अनुभव में आने योग्य होने से नियत है. पुण्य पाप की भांति अनेक रूप न होकर आत्मा एक रूप है. पुण्य पाप की भांति आत्मा क्षणिक नहीं है बल्कि त्रिकाल होने से नित्य है और संयोग जनित न होने से अभ्यभिचारी है. गुरुदेव की कितनी विशेषता है कि इतनी तिरछी बातों में से उन्होंने भी वो बोल निकाल दिए, है ना. बस इन्हीं सब कारणों से आत्मा स्थायी भाव स्वरूप है और स्थायी होने से आत्मा स्थाता का स्थान होने योग्य है. इसलिए पदभूत है, वही स्थाता का स्थान ले सकता है. ये इतनी क्वालिटी हो तो वो मेरा जो स्वपद है वो उसमें शामिल हो सकता है और परपद की जितनी चीजें हैं उनमें ये सब चीजें नहीं है. इसका जो निष्कर्ष का कलश है वो बहुत ही मार्मिक है, वो उसी में चलता है. एक मेव ही तत्स्वाद्यम जिसके एक बात पे हमें ये समझ लो कि हरिगीत छंद चार लाइन का होता है कि दो लाइन का है, क्योंकि ऊपर का हरिगीत वो चार लाइन का है, अगला हरिगीत चार लाइन का है और ये बीच में दो लाइन का है. क्यों? अब हरिगीत का नियम निकालो वहां से कितने पद का है, कैसा है कैसा है. असलियत में ये छोटा छंद था ना अनुष्टुप, तो इसका अनुवाद एक दोहे में भी समा सकता था, एक सोठे में भी समा सकता था, मतलब छोटे छंदों में भी समा सकता था. तो आपके सामने ये समस्या नहीं आती कि चार लेन का माने कि दो लेन का माने. वैसे तो बहुत स्पष्ट है कि गाथाओं का जितना पद्यानुवाद है अपन ने किया हो चाहे पहले सोनगढ़ में हुआ हो, हिम्मत भाई ने गुजराती में किया हो, वो सब उसको हरी गीते ही बोलते थे ना, और वो सब दो दो लाइन के ही हैं. और हम कलशों का पद्यानुवाद करते हैं तो दो लाइन में समाता ही नहीं है. अपन ने भी 415 गाथाओं के 415 दो लाइन के ही हैं सर, और जब कलशों का पद्यानुवाद किया तो भी चार लाइन से में से कम में समाते ही नहीं है, और कभी कभी 6 लाइन भी लग जाती हैं पूरा भाव आने में, है ना. तो फिर चार चार लाइन के आ गए. वो छंद कितना ही हो, बालों उन्होंने दो मान लो, दो छंद मान लो, तो भी हम उनको बात तो वहीं खत्म होती है ना, वो दो छंदों में खत्म होगी, एक छंद में बात तो खत्म होगी नहीं. तो अभी उस वक्त ये आया कि अभी एक छंद माने के दो छंद माने, यदि समय साथ पद्यानुवाद के दो छंद माने चार लेन के, तो इस कलश में हम एक छंद क्यों मान रहे हैं. ये समस्या उस वक्त इसके नंबर डालने में ही हुई. दोनों तो नहीं मान सकते. अब यहां तुमने दो लेन का एक छंद बना रहे और वहां चार लेन का छंद है, ऊपर और आगे और पीछे. तो हमने इसका नियम ये रखा कि ये जो हमने नंबर दिए हैं वो इनके छंदों के हिसाब से नहीं गिनना, वो तो जो कलश हैं संस्कृत में तो जितना नंबर के कलश का वो पद्यानुवाद है वो चाहे छह लेन में आवे चाहे चार में आवे चाहे दो में आवे वो उसके हिसाब से नंबर दिए हैं। अब छोटा था तो अब इसको एक ऐसा कर सकते थे दोहे में डाल सकते थे बहुत आसानी से, लेकिन वो पीछे से फ्लो इतना बढ़िया चला आ रहा है। दो तीन छंद पढ़ो आप और अगला छंद है उसके बीच में यदि इस दोहे को दोहा डाल देते तो बहुत रस भंग हो जाता, मजा आ जाता। बीच में वो गाने का में जो एकदम रस परिपाक होता है ना वो टूट जाता। इस छंद का जो पद्यानुवाद है ना इसको पिछले एक छंद और अगले एक छंद इन दोनों के साथ पढ़ो और फिर देखो कितना उसका मजा आता है। और यदि दोहा कर देते तो वो मजा खत्म हो जाता। आया ना ख्याल में, इसमें अंत में पद है शब्द वह ज्ञान पद आराध्य है वह ज्ञान पद, उस ज्ञान पद और उस ज्ञान के आस्वाद में किस तरह से मिलता जुलता है, किस तरह मिलता है, क्योंकि उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जो पिछली बात चल रही है और पिछले कलश से मिलाओ तो अंत में देखो क्या छूटा है कि अब पर हो स्वयं हो परम पदमय तुम स्वयं हो चैतन्यमय, अरे जिसके सामने हो सभी पद भाषित अपन है ना। ये कंटिन्यूटी है। आप एक बात और खड़ी खड़ी कर सकते हैं कि अमृतचंद्र ने यह ध्यान क्यों नहीं रखा। अमृतचंद्र भी ऊपर जो मंदाक्रांता था है ना, पहले कौन सा था मंदाक्रांता था और बाद में शार्दूल विकीर्ण लिख दिया और बीच में अनुष्टुप डाल दिया, वे भी ऐसा कर सकते थे। मेरा कहना यह है कि यदि वे स्वतंत्र रूप से ये कलश लिखते तो गारंटी से ऐसा ही करते, लेकिन वो हर गाथा के और टीका के बाद लिखते थे ना तो वहां कंटिन्यूटी छूट जाती है। वो तो टीका के अंश हैं, गद्य के अंश हैं, आप समझे ना। तो उन्होंने तो वो उस वक्त लिखे जब वो गाथाओं की टीका लिख रहे थे तो जो टीका में उनको भाव आया और जो भाव जैसा उमड़ा उनके लिए जो छंद उसके लिए उपयुक्त लगा, लंबी बात कहनी है तो लंबा छंद ले लिया, छोटी बात कहनी है तो छोटा छंद ले लिया, उनने तो ऐसा किया। तो अपन भी ऐसा ही कहते, अपन भी तो वैसे ही आ रहा है ना, लेकिन अपन इसको एक स्वतंत्र रूप से भी देखना चाहते हैं ना। रोजाना हम आपसे पाठ करवाते हैं गाथाओं का और कलशों का, इसलिए तो करवाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि वो हम ऐसे पढ़ेंगे तो कंटिन्यूटी आपके ख्याल में नहीं आएगी। मैंने कैसी विचित्र बात है कि उधर ऊपर से तो हर गाथाओं में अलग अलग लिखा छंद है, लेकिन उनमें एक अद्भुत कंटिन्यूटी अलग से ही रख दो तो भी हो सकती है। اس کا پرنام کیا نکلا؟ اس کا پرنام یہ نکلا کہ امرت انداری کی آتم خیاتی ٹیکا میں سے ایک کلش نکال نکال کر بعد کے آچاریوں نے امرتند کے بعد کے آچاریوں نے سوتنت گرنتھ بنا لیے. وہ ایک دو نے نہیں, یہ کون سی ہے وہ تتو پرم ادھیاتم ترنگنی, وہ کچھ اور کچھ نہیں ہے, ایک کل سے ہی ہے, ان کی ٹیکا انہوں نے لکھی ہے. دوسرا پنڈت جگن موہن لال جی نے, پانڈے راجمل جی نے, بنارسی داس نے, یعنی اس گرنتھ کو جو ایک ٹیکا کے انش ہیں, ان ٹیکا کے انشوں کو اکیلے پد پد نکال کے الگ کتاب بنا دی, اور وہ کتاب میں ادبھت کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے. نہیں ہوتی تو نہیں بنا سکتے تھے. مطلب وہاں الگ الگ بھی ہیں, وہ ٹیکا کے انش بھی ہیں. ایک آپ جانتے ہیں کچھ ہوتے ہیں گد کاو اور کچھ ہوتے ہیں پد. کچھ کتابیں گد گد میں لکھی جاتی ہیں اور کچھ کتابیں پد پد میں لکھی جاتی ہیں. لیکن ایک کاو اور ہوتا ہے جسے چمپو بولتے ہیں, گد پدم کاویم چمپور تبھی دے. لیکن وہ ناٹک ہوتے ہیں زیادہ تر, پردیو چمپو, جمو سوامی چمپو ہے نا, تو بیچ بیچ میں چھند آتے ہیں اور پھر گد آ جاتا ہے, پھر چھند آ جاتے ہیں, پھر گد آ جاتا ہے, پھر چھند آ جاتے ہیں. وہ چمپو ساہتیہ بولتے ہیں اسے. لیکن وہ سب کتھانکوں میں آتا ہے, پرتھمانی یوگ میں آتے ہیں. جو کوئی کہانی لکھتے ہیں نا اسے, ان میں آتے ہیں. یہ چمپو کا پریوگ سمے سار کی آتم خیاتی ٹیکا میں سب سے پہلے امرت چند نے کیا, پہلے نہیں ملے گا. دوسرے دیکھ تو سب سے بڑی پرادھینتا یہ ہے کہ ہم دوسرے کی گرنتھ کی ٹیکا لکھ رہے ہیں, تو وشے وستو کو ہم اپنے حساب سے تو گھما نہیں سکتے. جو ان گاتھاؤں میں وشے وستو بتائی ہے ہمیں اسی کرم میں چلنا پڑے گا نا. تو اپنے حساب سے استند تو بنا نہیں سکتے, تو وہ ٹیکا لکھتے گئے اور اس میں برابر ان نے وہ چمپو, اسے ایک چمپو بنا دیا, گد پد گد اور پد اس کے بیچ بیچ میں آ گئے. جبکہ جتنے بھی چمپو اور پراپت ہوتے ہیں جینوں اور اجینوں میں, وہ سب کتھانک کے شاستر ہیں, وہ ایسے ادھیاتم کے شاستر نہیں ہیں. ناٹک بھی ایسے ادھیاتم میں نہیں نے پریوگ کیا ہے. ناٹک بھی وہ کہانیاں جو ہوتی ہیں نا, انہی میں ناٹک لکھے جاتے ہیں. ادھیاتم میں بھی کوئی ناٹک لکھا جائے گا, یہ بھی کند کند نے تو نہیں لکھا تھا ناٹک. انہوں نے تو سیدھی گاتھائیں بنا دی تھی 415 الگ سے سوتنت, لیکن اس کو ناٹک کا روپ امرت چندر نے دیا آتم گھاتی ٹیکا میں, اور ناٹک کا روپ دیا, اور ناٹک کو بھی چمپو ناٹک کا روپ دیا گدے کے روپ میں. تو یہ اس کی بڑی وشیشتا ہے. ان میں الگ سے پڑھنے کا مزہ الگ ہے, میرے کہنے کا مطلب. اس لیے آپ اس کو بھی پڑھیں, اس کے لیے پاٹھ ضروری ہے. ابھی دھیرے دھیرے مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو رس آنے لگ گیا ہے, کیونکہ اس میں آپ کو آلس نہیں ہوتا ہے. پہلے جو صبح پروچن ہوتا تھا نا 5 بجے 6 بجے, اس وقت 10 منٹ پڑھنا انواری کیا تھا تو نہیں آتے تھے, کوئی 2 منٹ پہلے آ گئے 1 منٹ. اب میں دیکھ رہا ہوں ان دنوں برابر 10 کی جگہ 12 منٹ 13-15 منٹ پہلے آ جاتے ہیں, اور وہ برابر اس وشے کا پورا پاٹھ کرتے ہیں جو وشے چل رہا ہے. تو وہ وشے چلنے سے اس کی کنٹینیوٹی ان کے خیال میں آتی ہے. کلسوں کا پاٹھ الگ سے اور گاتھاؤں کا پاٹھ الگ سے, وہ اپنے آپ میں بہت مہتوپورن ہے. گرودیو کی دشٹی میں بھی اس کی کم مہیما نہیں تھی. گرودیو کو تو کیا بولوں نا, مہینہ بھر میں ایک دن وہ اپنا پروچن بند کر کے 1 گھنٹے تک پاٹھ ہی کرواتے تھے. پورا پروچن بند رہتا تھا, چاہے وہ شیور کا ٹائم ہو چاہے کچھ بھی ہو, بیچ میں جو ان کا دن آتا تھا تو بس سب بیٹھ کے بھائی سمے سار کی گاتھاؤں کا پاٹھ کرو. وہ گجراتی پدیانواد کا کرواتے تھے, کیونکہ زیادہ تر لوگ گجراتی لوگ وہاں تھے نا, اس لیے تو پورے گھنٹے پاٹھ کرواتے تھے, ہے نا. اپن نے یہ پرمپرا رکھی ہے کہ بھائی جو وشے چلے वो विषय से संबंधित कुछ दो चार छंद आगे से, दो चार छंद पीछे से, और हम उसका पाठ करें। मैं गुरुदेव जी का प्रवचन उनकी उपस्थिति में जब भी सुनता था तो मेरी एक नियम था कि जब सब लोग पहले तो पहुंच ही जाते थे पांच दस मिनट पहले, और गुरुदेव बड़े बड़े शांति से अपना स्वाध्याय करते रहते थे, तो मैं भी जो गाथा चलती होती उसकी चार पांच गाथाएं पहले से और चार पांच गाथाएं बाद तक उसे पढ़ लेता था वहां बैठे बैठे उसको उस टाइम में, क्योंकि मुझे उस विषय की कंटिन्यूटी ख्याल में रहे। तो अब मान लीजिए एक दिन तो ऐसा हो गया, अब दूसरे दिन तो वही विषय आगे चलेगा ना, फिर मैं दूसरे दिन वही करता, चार पांच गाथाएं पीछे से और चार पांच गाथाएं आगे तक, उनका जो दस मिनट समय मिलता था तो उसको मैं पूरा पढ़ता था। मैं भी एक मिनट यहां देखने में खराब नहीं करता था। ये असली शास्त्र सुनने की, अध्ययन करने की, इसकी पद्धति क्या है, ये हमारे जब तक ख्याल में नहीं आएगा हैं, तब तक हम इस बात को नहीं कर सकते हैं। एक तो मुक्तक काव्य होता है और एक प्रबंध काव्य होता है। मुक्तक काव्य उसे बोलते हैं कि जिसका एक एक छंद का अर्थ अलग अलग हो जाता है, आगे पीछे से कोई संबंध नहीं है। जैसे कि तुलसीदास के दोहे हमने दस लिख दिए, उन दस दोहों में आपस में कोई संबंध नहीं है, पर एक एक अलग अलग बात कहते हैं, उन्हें मुक्तक बोलते हैं। और जिसमें एक बात कंटिन्यूटी में चलती है, कहानी चलती है, राम की कहानी चल रही, तो उसे बोलते हैं प्रबंध काव्य। अब ये समय सार तो अध्यात्म का ग्रंथ है, अब इसे मुक्तक में लेंगे क्या प्रबंध, वे भेद तो सब प्रतिमानियों के उनके हैं। तो बहुत से लोग आपको मिलेंगे कहते हुए समय सार की प्रशंसा करते हुए, अरे समय सार तो क्या है, समय सार की तो एक एक गाथा मोती है मोती क्या। अब मोती माने होता है मुक्तक, छंदों में मुक्तक होता है ना, जो उर्दू में होते हैं शेर और हिंदी में होते हैं मुक्तक। तो वो ऐसा कहना चाहते थे कि समय सार मोतियों की माला है, माने मुक्तक छंद है, माने आगे पीछे की गाथाओं से इनका परस्पर में कोई संबंध नहीं है, हर गाथा बिल्कुल सेपरेट स्वतंत्र है। तो मैं कहता था कौन कहता है, ये तो प्रबंध है, क्यों कि इनमें एक बहुत कंटिन्यूटी है, उसे कहीं से कहीं हटा नहीं सकते आप, एक गाथा को आगे पीछे नहीं कर सकते, एक व्यवस्थित क्रम चलता है, वो एक बात का प्रतिपादन करते आ रहे हैं तो वो बात मिलेगी आपको उसमें। अब उन्होंने कर्ता कर्म, जीवा जीवाधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, आश्रव अधिकार, समर अधिकार, अब निजरा अधिकार में आए ना, तो जहां हम आ गए जिस गाथा पे, वहां से लेके पहली गाथा से 202 गाथा तक एक कंटिन्यूटी है, उसके बाद एक गाथा है, तब तो वे अतः कह सकते हैं ना, इसलिए ऐसा समझो आप है क्यों। अरे जिसके सामने हो सभी पद भाषित अपद, कहते दुनिया में जितने भी पद हैं वे वैसे हमारे पद नहीं हैं, तो उन्हें हम परपद कहना चाहिए है ना, लेकिन वो कहते हैं परपद नहीं, वे तो अपद ही है, पद ही नहीं है, वो पद जैसे लगते ही नहीं है। देखो जगत में जितने भी पुरुष हैं, सुनना, वो सती के लिए उनमें से एक उसका पति ही पुरुष है क्या, क्या समझ। तो और बाकी सब अपुरुष हैं, हमें नपुंसक नहीं कहना चाहता क्या अब समझे ना, ये अपद है ना, तो अपुरुष हैं, तो क्या कह रहे तुम, दूसरों का अपमान कर रहे, उन सबका मेडिकल चेकअप करा लो आप। ये भैया ये मेडिकल चेकअप की बात नहीं है, इस सती की दृष्टि की बात है। उस सती की दृष्टि में उसका पति ही पुरुष है और कोई जगत में पुरुष है ही नहीं, है ना? वो क्या है हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे ही एक आत्मार्थी की दृष्टि में अपना भगवान आत्मा ही पद है, बाकी सब अपद हैं। नहीं नहीं, वे भी बहुत हैं, वे भी तुम्हारे अनंत गुणों के पिंड हैं, हर आत्मा भगवान है, उसमें इतनी क्वालिटी है, और कुछ तो अपन से भी अच्छे हैं। अनंत भगवान सिद्ध भगवान है ना, अपन से अच्छे हैं, लेकिन हमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता जगत में। हमारे लिए बात हमारे लिए है ना, क्योंकि अनंत भगवान के त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उनमें भी है, लेकिन उनके उस आत्मा के आश्रय से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, सम्यक ज्ञान तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। वो हमारा जो आत्मा है हमें उससे ही होगी। तो तेरे लिए जैसे कहते हैं वो, और जगत में पुरुष है ही नहीं सती की दृष्टि में, ऐसे ही आत्मार्थी की दृष्टि में और पद अपद ही भाषित होते हैं। भाषित लगा ना, मतलब है कि नहीं है, कि ये जांच करने की जरूरत नहीं है, ये तो उसके दृष्टि की जांच हो रही है। अरे जिसके सामने हो सभी पद भाषित अपद, सद सब आपदाओं से रहित आराध्य है वह ज्ञान पद। देखो ये आपदाओं एक एक का कितना विचित्र प्रयोग है, इसमें भी पद है ना, आपद तो पद शब्द है ना, इसे पद से ही बना है, ये आ उपसर्ग से बन गया ना, पद अपना पद है अनंत सुख की खान, और बाकी पद हैं आपद, समझ ना, आ उपसर्ग लगा दिया। अभी पाका फा हो गया, ठीक है, घबराना नहीं, नियम बता रहा हूं, तो क्या हो गया, और दाका ता हो गया, तो भी आफत, बिल्कुल ऐसा ही हुआ भाषा विज्ञान में, आपद और उसका क्या बन गया, वे तो आफत हैं। और ये होना कोई कठिन नहीं है, क्योंकि दा शब्द है वो तवर का ही है, ता था दा, समझ गया, तवर का ही है क्या नहीं, और फा शब्द भी पवर का है, तो दोनों जगह अल्प प्राण का महाप्राण हुआ है। तुम तो समझ गया होगी ना, सब में क्या कह रहे, कि अल्प प्राण क्या था, आपद, तो पा था अल्प प्राण और फा क्या है, महाप्राण, समझ गए। हरेक जो एक वर्ग होता है ना, कवर्ग, का खा गा घा, यहां तो इनमें ऐसा नियम है कि का पहला अक्षर है क्या, अल्प प्राण, और दूसरा अक्षर होता है महाप्राण, फिर तीसरा होता है अल्प प्राण, फिर चौथा होता है, ठीक है, और पांचवा होता है अनुनासिक, ऐसा नियम है। अब इसे अंग्रेजी से समझो तो हरेक में अंग्रेजी के अक्षर 26 क्यों रह गए और हिंदी के 52 क्यों, कि उसने क्या किया कि एच से सब जगह काम चला लिया, पी माने पा और पी एच माने फा, टी माने ता और टी एच माने था।